कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण Jaya Radha Gopulananda, Radha Gopulananda Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहितवान ग्रहित अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा गोकुलानंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव तिथि महोत्सव की श्री श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद आज
जगत भर के वैष्णवों के लिए खास करके और वास्तव में जगत के सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि फाल्गुन मास के इस पूर्णिमा के तिथि पर 1446 वर्ष में नवद्वीप बंगाल में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अद्भुत अवतार लिया और उस अवतार का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु और उन्होंने अवतार लेकर सबको सिखाया कि कृष्ण भक्ति क्या चीज है। उस दिन पूर्णिमा थी लेकिन राहु ने चंद्रमा का ग्रहण कर दिया और क्योंकि चंद्र ग्रहण था तो सभी लोग जोर जोर से भगवान का नाम पुकार रहे थे और पवित्र स्थलों में जाकर नदी में स्नान करते थे। नवद्वीप गंगा जी के तट पर है और वहाँ के सारे निवासी गंगा गए और गंगा जी में स्नान करते करते हरी हरी ऐसे उच्चारण करते रहे। किसी को समझ में नहीं आया कि उनके हृदय में इतना हर्ष उल्लास क्यों हो रहा है, इतना आनंद उनको क्यों हो रहा है। सभी लोग सोच रहे थे कि शायद चंद्र ग्रहण का कोई कारण होगा, लेकिन थोड़े वैष्णव थे वो समझ गए कि इसका कारण एक ही है कि स्वयं श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं, और इसलिए बड़े धूमधाम से वो हरि नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने ये विचित्र चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों लिया, ये एक सुनने लायक विषय है। चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ में और चैतन्य भागवत नाम के ग्रंथ में इन चीजों का विस्तार में वर्णन आता है। बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के बाहरी कारण तीन हैं और गुह्य कारण तीन हैं। आज हम केवल उन बाहरी कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के गुह्य कारण हैं, उनके बारे में चर्चा कभी और करेंगे। वैसे आजकल हम सब जब इधर उधर देखते हैं बाहर संसार में, तो ये देखते हैं कि सभी लोग भौतिकवाद में लगे हुए हैं। बहुत कम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की रुचि है। सभी लोग आजकल केवल इंद्रिय तृप्ति या भोग के मार्ग में चले हैं, और आजकल ये टेलीविजन, सिनेमा इत्यादि, इनकी वजह से तो भोग वृत्ति बहुत बढ़ गई है। तो ये भोग वृत्ति 500 साल वर्ष भी बहुत तीव्र थी, हालांकि आज जितनी तीव्र है उतनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत तीव्र थी। खास करके जहां चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, नवद्वीप नाम का जो शहर था, वहां देखा जाता था कि विद्या की स्थली होने के बावजूद भक्ति का नाम निशान वहां नहीं था। वैसे नवद्वीप नाम का शहर उस समय बहुत विख्यात था, क्योंकि वहां विश्वविद्यालय थे। देश के कोने कोने से विद्यार्थीगण वहां शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए आते थे। व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि वहां सिखाए जाते थे। हजारों हजारों की संख्या में अनगिनत विद्यार्थी वहां आते थे पढ़ाई करने के लिए, और जितने ही सारे विद्यार्थी थे उतने ही अध्यापक भी थे। सारे देश के विद्वान पंडित वहां आते थे, और सारे नवद्वीप शहर में शास्त्रों के वाक्य गूंजते रहते थे। जगह जगह दिखने में आता था कि शास्त्रों के आलोचना हो रहे हैं, वहां कोई व्याख्या दे रहा है, कोई टीका कर रहे हैं, कोई चर्चा हो रही है। ब्राह्मण पंडित और उनके शिष्य अलग अलग जगह दलों में बैठकर शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते थे। गंगा जी के तट पे हजारों की संख्या में लोग बैठकर अपना पूजा पाठ करते थे। आजकल आप किसी नदी के तट में जाएं या समुद्र के तट में जाएं, तो केवल भेलपूरी के दुकान मिलेंगे और इधर उधर इंद्र तृप्ति करने के लिए लोग मिलेंगे। नदी के तट पे अभी कोई पूजा पाठ के कार्य नहीं चलते हैं, कम से कम उतना तो हो रहा था उस समय। तो इतने होने के बावजूद जो वहां के विद्वान थे, पंडित थे, जिन्होंने जिनको की बड़े बड़े पद मिले थे, जैसे कि भट्टाचार्य, मिश्रा इत्यादि, ये लोग हालांकि शास्त्रों के ज्ञान को सिखाते थे, फिर भी इनको शास्त्रों के निष्कर्ष का ज्ञान नहीं था। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, वेदान्तकृत वेदविद् एव चाहम्। हे अर्जुन, ये जान लो कि वेदों की रचना करने वाला मैं हूँ, वेदांत को जानने वाला मैं हूँ, और वेदों का अध्ययन करने का उद्देश्य है मेरी प्राप्ति करना, मेरी भक्ति करना। तो बहुत सरल सी बात है। विद्या की परिपूर्णता, विद्या का उद्देश्य यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को पहचाने और उनके शरण में जाएं। लेकिन इतने सारे विद्वान नवद्वीप में इकट्ठे हुए थे, शास्त्रों के श्लोकों का उच्चारण करते रहते थे, पाठ करते रहते थे, बचपन से करते आए थे, अभी वृद्ध भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं मालूम था कि शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सार क्या है। और इसलिए वो जो तथा कथित पंडित थे, वो केवल अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए चेष्टा करते थे, लोगों के सामने दिखाने के लिए कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। और आप जानते हैं कि जब इस तरह की स्पर्धा होती है तो कैसा वातावरण तैयार हो जाता है। हर एक व्यक्ति जब अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए चेष्टा करता है तो आपस में झगड़े होते हैं, निंदा होती है। तो इसी तरह से ये सारे तथा कथित पंडित एक दूसरे की निंदा करते रहते थे, एक दूसरे में कमियां ढूंढने के लिए, दोष ढूंढने के लिए प्रयास करते थे, ताकि दूसरों को अगर नीचे साबित किया जाए तो अपने आप को ऊंचा साबित किया जा सकता है। और कोई भी ये नहीं बताता था कि शास्त्रों का निष्कर्ष है कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाएं। इससे हम सबक सीख सकते हैं कि केवल शास्त्र पढ़ने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जीवन की परिपूर्णता की प्राप्ति हो नहीं सकती है। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नसावृषि मतम न भिन्नम। शास्त्र कितने सारे हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीजें बताई गई हैं, और प्रार्थनाएं, स्तुति, स्तोत्र इत्यादि कितने कितने हैं। और तर्क करने से शास्त्रों का सार नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, केवल आदमी भ्रमित हो जाता है। ये तो मुनियों का काम है, केवल तर्क करके एक दूसरों को भ्रमित करना। तो ऐसा वातावरण फैल गया था नवद्वीप में। हालांकि शास्त्र थे वहाँ, शास्त्रों के ऊपर चर्चा थी, लेकिन सारा वातावरण भक्तिहीन था। श्री कृष्ण के नाम का भी उच्चारण नहीं होता था। यहाँ तक कि वहाँ के रहने वाले जो सन्यासी थे, वैरागी थे, योगी थे, गलती से भी उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम निकलता नहीं था। और अगर किसी के मुख से कृष्ण भगवान का नाम निकलता भी था तो माना जाता था कि वो बहुत पुण्यात्मा है। कभी कभी सुबह उठकर एक रीत रिवाज की तरह से किसी ने कृष्ण गोविंद पुंडरीकाक्ष ऐसे उच्चारण किया तो वो बहुत ही पुण्यात्मा माना जाता था। तो जब सारे तथाकथित ज्ञानी और आध्यात्मिक साधकों के जीवन में अगर ये दशा थी तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जन साधारण की दशा क्या हुई होगी। जो शास्त्रों में निपुण थे, शास्त्रज्ञ थे, वो भक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं बात करते तो जन साधारण भला कैसे करती। तो जन साधारण में दशा तो बहुत बुरी थी। इंद्र तृप्ति एक ही इच्छा सभी के मन में थी, सभी लोग भगवान की सेवा करने के बजाय, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दान देने के बजाय पैसे अपने केवल खर्च करते थे इंद्र तृप्ति के ऊपर। और अपने बच्चों के विवाह के लिए बताया जाता है इतना सारा पैसा खर्च करते, लेकिन भगवान के लिए एक कौड़ी पैसा खर्च नहीं करते थे। और उनके मन में धर्म क्या था? धर्म यही था कि किसी न किसी देवी देवता की पूजा करना, भूत प्रेत पिशाच की पूजा करना, यही सब चल रहा था। लोगों को दुर्गा देवी की पूजा करना पसंद था। पूर्व दिशा में, पूर्व प्रांतों में ये लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग चंडी देवी की पूजा करते थे, वसुती जो कि एक चंडी देवी की विस्तारित रूप है, उनकी पूजा भी करते थे। कोई लोग यक्षों की पूजा करते थे और मांस और शराब इत्यादि उनको अर्पण करते थे। कोई भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते थे और इस तरह से रजोगुण और तमोगुण की आराधना चलती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो विमाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो लोग भूत प्रेत पिशाचों की पूजा करते हैं वो भूत लोक में पिशाचों के लोक में जाते हैं मृत्यु के बाद, और जो पुत्रों की पूजा करते हैं पितृ लोक में जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं मेरी भक्ति करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन यान्ति मत याजिनोपिमान। इस तरह से अलग अलग तरह की सेवा, अलग अलग तरह की उपासना करने से अलग अलग तरह की गति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों की धारणा होती है कि हम जो भी पूजा करें किसी की भी सेवा उपासना क्यों न करें हमारी एक ही गति होगी, जीवन की सफलता प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट तरह से इस बात का खंडन करते हैं भगवद गीता में। तो हम जान सकते हैं कि जो लोग भूत प्रेत पिशाच यक्षों की पूजा करते थे उनकी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी, उनकी आदतें क्या हुई होंगी, किस तरह का जीवन वो बिताते थे। जब पूजा में वो मादक पदार्थ और मांसाहार अर्पण करते थे तो अपने जीवन तो इन चीजों का सेवन तो होता ही होगा। इस तरह से ये लोग सुबह से रात तक केवल इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगते थे, और जब वहाँ के वैष्णव जो भी थोड़े बहुत थे जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए थे वो जब जाके उनसे कहते कि भाई जरा हरि नाम ले लो, कृष्ण कीर्तन करो, गीता भागवत का संदेश सुनो, तो वो लोग तिरस्कार करते थे, कहते थे कि ये सब बकवास है, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐश करना मजा मनना यही जीवन का उद्देश्य होता है। और ये सब देखकर जो वैष्णव हैं वो बड़े उदास हो जाते थे, निराश हो जाते थे। अपने आप में तो मिलजुल कर वो लोग कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन तो करते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि सारे शहर में प्रांत में देश में लोगों को भक्ति की में कोई रुचि नहीं है तो उनके हृदय में बड़ा दुख होता था। जिस तरह के यहाँ भी कृष्ण भक्त एकत्र होते हैं और कितनी बार लोग आके कहते हैं कि हमारे घर में भक्ति के लिए विरोध है, हमको घर में भक्ति करने नहीं देते हैं, और बाहर संसार में भी लोग जब भक्त जाते हैं तो भक्तों का मजाक उड़ाते हैं या भक्तों की निंदा करते हैं या भक्तों के खिलाफ कितने कार्य करते हैं, तो भक्त लोग ये देखते हैं तो उनके हृदय में भी दुख होता है कि समाज की दशा क्या हो रही है। अभी जो लोग धार्मिक अनुष्ठान भी मनाते हैं तो इतनी बुरी दशा हो गई है कि लोग नाना प्रकार के पश्चिम देशों के संगीत लगाते हैं। संगीत तो क्या, ये तो केवल आवाज है, और ये संगीत लगाकर जिसमें कोई भक्ति की भावना नहीं है, भगवान का नामो निशान नहीं है, ऐसे सब पश्चिमी देश के संगीत या तो फिल्मों के कोई गीत लगाकर वहाँ पे वो सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक कार्य कर रहे हैं। तो ये दशा हो गई है भारतवर्ष में, जो कि पुण्य भूमि है, जिस देश में जन्म लेने के लिए बहुत सालों तक बहुत जन्मों तक पुण्य एकत्र करना पड़ता है, ऐसे देश में ये दशा है। तो इस तरह से वहाँ भी लोग ऐसे ही कड़ी निंदा करते थे। वहाँ अद्वैत आचार्य नाम के महान वैष्णव रहा करते थे। वास्तव में अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार थे लेकिन भक्त के रूप में आए थे, और अद्वैत आचार्य बहुत शुद्ध भक्त थे और उनके सुंदर प्रवचनों के लिए वो प्रसिद्ध थे। सभी जो वैष्णव थे बहुत आतुर रहते थे अद्वैत आचार्य के प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि इतने सुंदर ढंग से वो गीता और भागवत के ऊपर वो व्याख्यान करते थे कि इसमें हर एक बात में वो निष्कर्ष इसी बात पर पहुंचा देते थे कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और घुमा फिरा कर इसी दृष्टिकोण से वो वर्णन करते थे, व्याख्या करते थे। कृष्ण के अलावा उनको कुछ मालूम ही नहीं था, और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे शुद्ध भक्त एकत्र हुए और वो लोग धूमधाम से कीर्तन करते, जितने भी थोड़े बहुत भक्त थे, और दिन रात कृष्ण कथा करते रहते। इन्हीं में उनको आनंद मिलता था। जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, मत चित्ता मत कतः प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस माम नित्यम दुष्यंति च रमंति च, जो मेरे भक्तों के लिए मैं ही प्राण धन हूँ, मेरे अलावा भक्त लोग कुछ जानते ही नहीं है और परस्पर हमेशा मेरी कथा करते रहते हैं। तो इस तरह से वो वैष्णव वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो उन वैष्णवों के संग में एक और शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित के तीन भाई थे और उनका घर था और घर के सामने आंगन था। तो श्रीवास पंडित और अपने तीन भाई और कभी कभी उनके साथ अन्य वैष्णव भी आते थे और वहाँ पर रात भर कीर्तन करते थे। और ये वैष्णव की कीर्तन सुनकर जो बाकी के लोग समझ नहीं पाते थे कि ये वैष्णव क्या है, ये कीर्तन में इनको क्या आनंद मिलता है, क्यों ये लोग कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्या करते हैं, भगवान ही जाने, हमें तो नहीं पता चलता कि ये लोग क्या कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे भक्तों को भी लोग कहते हैं, ये क्या तुम लोग कीर्तन करते हो, नृत्य करते हो, कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, क्या मतलब है इसका, क्यों समय बर्बाद करते हो ये सब चीजों में, कुछ पैसा कमाओ, ऐश करो, सिनेमा देखो, टीवी देखो, कुछ काम की चीजें करो। तो उसी तरह से लोग श्रीवास पंडित और उनके भाई को टोकते थे, छेड़ते थे और कई लोग उनसे बहुत गुस्से हो जाते थे, कहते थे कि अरे श्रीवास पंडित, यहाँ तुम नहीं जानते कि जो यहाँ पर नवाब है वो मुसलमान नवाब है, और वो तो जब सुनेगा कि जोर जोर से कृष्ण के नाम का कीर्तन हो रहा है तो आके सब सत्यानाश कर डालेगा, सारे गांव को नष्ट कर डालेगा वो, और तुम लोगों की वजह से हम भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए बंद कर दो। ऐसा लगता है कि आपको रात भर खाना नहीं मिलता, दिन भर इसलिए रात में कृष्ण कृष्ण चीखते रहते हैं भूख के मारे, तो कृष्ण कीर्तन बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर को उखाड़ डालेंगे, जला डालेंगे और नदी में फेंक डालेंगे। तो जब सारे भक्त लोग ये सब चीजें सुनते थे तो उनका हृदय टूट जाता था। कई भक्त फूट फूट के रोने लगते थे कि ये क्या दशा है समाज की, क्योंकि वैष्णव का स्वभाव होता है वो पर दुख दुखी होता है, अर्थात दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है। आजकल प्रथा कुछ विपरीत हो गई है ना, पर दुख सुखी और पर सुख दुखी होते हैं, हम दूसरों के दुख को देखकर सुखी होते हैं, दूसरों को सुख देखकर दुखी होते हैं, लेकिन वैष्णव होते हैं पर दुख दुखी। जब देखते हैं कि दूसरे लोग दुखी हैं तो खुद दुख के सागर में डूब जाते थे, और शास्त्रों का ज्ञान होने के नाते उनको ये ज्ञान था कि सच्चा दुख है कि जब किसी के हृदय में किसी के जीवन में कृष्ण भक्ति न हो तब। संसार में लोग सोचते हैं पैसा हो जाए, कुछ भोग हो जाए, घर में बड़ा टेलीविजन गाड़ी आ जाए तो सुख आ जाएगा, लेकिन वैष्णव समझते हैं कि वास्तव में जब तक व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं बनता तब तक उसके जीवन में सच्चा आनंद नहीं आ सकता है। तो वैष्णव देखते थे कि कोई भक्त नहीं है, सभी दुखी है, हालांकि अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, ये तो और भी दुर्भाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि मनुष्य योनि की खूबी यह है कि इंसान दुखी होते हुए भी अपने आप को सुखी समझता है, ये मनुष्य जाति की पहचान है, अपने दुखद अवस्था को पहचानता भी नहीं है। तो इस तरह से सारे वैष्णव दुखी थे, ये लोग सब इस तरह से भगवान का तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, वैष्णव को के ऊपर छेड़छाड़ करते हैं, अब क्या दशा होगी इनकी, क्या गति होगी, क्या किया जाए इनके लिए। हम जब जाते हैं उनको बताने के लिए तो हम ही भगा देते हैं। इस तरह से लोग बहुत दुखी थे, खास करके वैष्णव। तो जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि वैष्णव इतने दुखी हैं और समाज की अवस्था ये हो चुकी है तो वो क्रोध से आग बबूले हो गए और सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने वचन लिया और सारे वैष्णवों के सामने उन्होंने व्रत लिया कि मैं वचन लेता हूँ कि श्री कृष्ण को अवतीर्ण करके ही रहूंगा मैं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भी तो महाविष्णु हूँ, मैं चतुर्भुज धारण करके सुदर्शन चक्र को मेरे उंगली में धारण करके सारे नास्तिक लोगों का सर कटवा दूंगा। तो मैं भगवान श्री कृष्ण की याचना करूंगा कि वो आकर यहाँ अवतार लें और सब लोगों को बचाएं अज्ञान से, इस नास्तिकवाद से, इस दुख से। तो अद्वैत आचार्य ने उस समय ध्यान लिया कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस परिस्थिति में सुधार लाने योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और उस समय उन्होंने सोचा कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और स्वयं भक्ति का आचरण करके दूसरों को दिखाएंगे भक्ति कैसे करना है, तब ये विश्व की जनता समझ जाएगी और भगवान के पद चिन्हों में चलेगी। और जब भगवान आएंगे तो सबके हृदय को आकर्षित कर देंगे और इस तरह से भगवान की ओर आकृष्ट होकर सभी लोग अपने अज्ञान को त्याग करेंगे और भगवान के शरण में आएंगे। उस समय अद्वैत आचार्य को शास्त्रों का एक श्लोक स्मरण आया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते सुमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। गौतमीय तंत्र से ये श्लोक है जिसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं, भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। और जब वो देखते हैं कि भक्त उनको तुलसी दल, तुलसी का पत्ता अर्पण कर रहे हैं, साथ साथ जल से शुरू केणवा थोड़ा सा जल उनको अर्पण करते हैं, तो इतने आभारी हो जाते हैं, विक्रीणीते स्वमात्मानम् अपने आप को वो बेच डालते हैं, उस भक्त के हवाले कर देते हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण केवल तुलसी पत्ता और जल अर्पण करने मात्र से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इस अर्पण करने की पद्धति में भक्ति होनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करे, भक्ति भाव से अर्पण करे, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तद अहम भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, ये मत समझ लो कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता। क्यों स्वीकार करता हूँ? क्योंकि भक्ति भाव से अर्पण किया जा चुका है मेरे भक्तों के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण पत्रम पुष्पम, ये पत्र जो कहते हैं वो तुलसी पत्र है। तो देखिए, संसार के करोड़ों करोड़ों रुपए से हम भगवान को खरीद नहीं सकते हैं। भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है। जिस पैसे को, जिस धन को, सोना चांदी को, घर बंगले को हम अपना समझते हैं, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। यहाँ तक कि हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, आत्मा भी भगवान की संपत्ति है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड और इसमें जो कुछ भी है, सब भगवान की संपत्ति है। तो भला हम उनको क्या दे सकते हैं? भला उनको इस भौतिक संसार के धन से कैसे खरीद सकते हैं? लेकिन आश्चर्य की बात है, भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल है, भक्ति से वो खरीदे जा सकते हैं, केवल प्रेम से। और जब भक्त केवल तुलसी का पत्र और गंगा का जल अर्पण करता है भक्ति भाव से, तो भगवान कहते हैं, विक्रीणीते स्वमात्मानम्, मैं अपने हाथ को बेच डालता हूँ, उसके हाथ में कर देता हूँ। तो देखिए, एक ओर सारे संसार का सोना चांदी धन रखिए और दूसरी ओर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा एक छोटा सा तुलसी का पत्ता। तो तुलसी का पत्ता और जल ज्यादा भारी है, क्योंकि इससे अगर आप भक्ति डालेंगे तो ये भगवान को खरीद सकता है, जो कि संसार का धन नहीं खरीद सकता। तो अद्वैत आचार्य ने ये श्लोक को याद किया और सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो हर रोज वो गंगा जी के तट पे बैठते, अपना आसन बिछा लेते और फिर अपने शालिग्राम शिला जो कि विष्णु का स्वरूप है, शालिग्राम शिला को गंगा जल अर्पण करते और साथ साथ में तुलसी मंजरी अर्पण करते और रोज इस तरह की पूजा करते करते हुंकार करते, जोर जोर से पुकारते कृष्ण के लिए कि हे कृष्ण आप अवतार लीजिए, आप अगर अवतार नहीं लेंगे तो और संसार के दुखी लोगों के लिए कोई उपाय नहीं है, कृपा करके आप अवतीर्ण होइए। ऐसे दिन प्रतिदिन अद्वैत आचार्य कृष्ण को भक्ति भाव से तुलसी और गंगा जल अर्पण करते हुए पुकारते गए। तो भगवान श्री कृष्ण तो आखिर में भक्त वत्सल है, तो कैसे अपने भक्त के पुकार को इनकार कर सकते हैं? जब कोई भक्त निस्सहाय ढंग से भगवान को पुकारता है तो निश्चित रूप से भक्त उसकी पुकार सुनते हैं और आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। जिस तरह से कि जब द्रौपदी ने हे गोविंद हे गोपाल पुकारा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनके कपड़े साड़ी के रूप में अवतार लिया था और उसकी लाज को बचाई थी। जिस तरह से मगरमच्छ के मुख में जब गजेंद्र हाथी फंस गया था तो गजेंद्र ने भी बहुत सालों तक युद्ध करने के पश्चात कमल पुष्प उखाड़ दिया और अपने सूट में फिर भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण को अर्पण किया और सुंदर स्तुतियां करने लगे तो तुरंत वैकुंठ से भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र की मुक्त को मुक्त करने आए, मगरमच्छ का सर काट दिया और गजेंद्र को बचा दिया। तो इस तरह से ये भगवान के गुण होते हैं कि जब भी वो देखते हैं कि भक्ति भाव से निस्सहाय भाव से कोई भक्त उनको पुकार रहा है तो वो दूर नहीं रह सकते हैं, अपने सारे कार्यों को छोड़कर वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। जिस तरह से कि एक माता जब वो घर के काम में व्यस्त रहती है लेकिन उधर कहीं और से उसका छोटा बालक चीख के पुकारता है, रोने लगता है, तो माँ वे सारे कार्यों को तुरंत छोड़कर उस बच्चे के पास चली जाती है क्योंकि वो जानती है कि अभी मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, उसे मेरी आवश्यकता इस वक्त पे है, इसलिए दूसरे कार्य में छोड़कर मुझे उसे उसके पास जाना चाहिए। और जितने जोर से आतुरता से निस्सहायता से वो बालक पुकारता है उतने ही जल्दी माँ उसके पास जाती है। ठीक उसी तरह से भगवान भी देखते हैं, अगर हम भी भगवान का नाम पुकारते हैं लेकिन निस्सहाय भाव से नहीं, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आराम से आलसी ढंग से हरे कृष्ण वहाँ क्या चल रहा, हरे राम करते हैं, तो भगवान भी सोचते हैं मैं भी थोड़ा घड़ी देखूं, मैं भी इधर उधर देखूं। अगर भक्त चाहता है कि मैं आराम से इधर उधर देखते हुए इधर उधर सोचते हुए भगवान का नाम का जाप करूं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलूं, तो भगवान भी सोचेंगे मैं भी थोड़ा इधर उधर का काम खत्म करके जाऊं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब ये होता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा, मुझे आपके नित्य सेवा में लगाइए, किसी न किसी तरह से मुझे ये भवसागर से उठाकर आपके चरण कमलों में एक रज बनाइए। ये है प्रार्थना जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करते हैं। तो अगर हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आके मुझे बचाइए और भगवान आ रहे हैं उधर देख के कह रहे बचाओ मुझे, तो भगवान बचाएंगे? जब कोई व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है, किसी से कृपा याचना कर रहा मुझे बचाओ, तो कैसे चीख चीख के बोलेगा बचाओ बचाओ? अगर बचाते समय अगर हम नदी में डूब रहे हैं और केवल हंसते हंसते लोगों को बोलेंगे बचाओ तो सोचेगा क्या मजाक कर रहे हैं, कोई कूदेगा नहीं, लेकिन जोर जोर से बोलेंगे बचाओ तो गंभीरता की पहचान हो जाएगी लोगों में, तुरंत कोई न कोई अरे बहुत उस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे,
कि हे मुरारी, आपने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, अभी हृदय में बैठे अज्ञान के राक्षस को खत्म कीजिए। मैं गर्भ में रहा हूँ, इतने महीने जन्म लिया, फिर मरण हुआ, फिर जन्म लिया, ये चक्र चलते आ रहा है अनादि काल से है प्रभु। और ये संसार बड़ा दुस्तार है, बड़ा दुख का जगह है, इसलिए कृपा करके मुझे बचाइए, ऐसे भक्त की कृपा याचना होनी चाहिए। तो अद्वैत आचार्य ठीक इसी भावना से भगवान श्री कृष्ण को हुंकार से पुकारते थे, तो भगवान कैसे इनकार कर सकते थे इस बात को। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब मेरे भक्त इतने पीड़ित हैं, तो मुझे उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके हृदय की पीड़ा को नष्ट करने के लिए नीचे जाना ही पड़ेगा, मुझे अवतार लेना ही होगा। मैं बद्ध हूँ अपने भक्त की इच्छा से। मेरे भक्त की इच्छा है, एक ऐसे डोरी है जो कि मुझे बांध लेती है, और मैं उनकी इच्छा के अनुसार मुझे काम करना ही पड़ता है। तो देखिए भक्ति कितनी शक्तिशाली चीज है कि सारे संसार के माया जाल के नियंत्रण करता एक साधारण से अशिक्षित भक्त के जंजाल में भी फंस सकते हैं। ये है भक्त की महिमा, भगवान की महिमा, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहते हैं। और फिर जब वैष्णव चाहते थे कि हम कृपा, भगवान की कृपा हो जाए सब भक्तों के ऊपर, तो भगवान ने सोचा मेरी कृपा वहीं जा सकती है जहाँ मेरे भक्तों की कृपा जाती है। तो भक्त लोग कृपा करना चाहते थे सब अज्ञानी लोगों के ऊपर संसार के, तो भगवान ने सोचा तो मुझे तो कृपा करना ही होगा। जब मेरे भक्त लोग चाहते हैं कि संसार के ऊपर कृपा हो जाए, तो मैं मेरी कृपा को रोक के रख कैसे सकता हूँ। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया और नवद्वीप में प्रकट हुए, अपने भक्त अद्वैत आचार्य की पुकार सुनकर और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए और वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे। गीता में भगवान बताते हैं कि अपने साधुओं की, भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, ये मेरा प्रमुख कार्य है। तो भक्तों की दुखद अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया और भक्त के रूप में आए, क्योंकि अद्वैत आचार्य चाहते थे कि जब तक स्वयं भगवान भक्ति का स्वयं आचरण करके नहीं दिखाएंगे, तब तक जन साधारण भक्ति मार्ग को अपनाएगी नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ही अपने भक्त के रूप में ही आए और इसलिए उनको श्री कृष्ण चैतन्य या गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। उनका रंग स्वर्ण रंग का था, इसलिए उनको गौरांग नाम भी दिया जाता था। तो ये पहला कारण था कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। दूसरा कारण ये था कि भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि मैंने अर्जुन को और सारे संसार को वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मैंने कहा कि जब जब धर्म की ज्ञानी होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं युग युग में अवतार लूंगा, मेरा वचन है ये। और अभी काफी समय बीत चुका है और मेरा अवतार लेने का समय आ गया है, मुझे जाकर पृथ्वी लोक पर धर्म की संस्थापना फिर से करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि चार युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी तो कलयुग चल रहा है और इन चार युगों का चक्र चलता रहता है, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे बहुत लंबे समय तक चक्र चलता रहता है। कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल। तो देखिए कितनी लंबी है कलयुग की अवधि, इससे दुगना है द्वापर युग, इससे तिगना है त्रेता युग और चार गुना है सत्य युग। तो ये चार युगों को एक बार मिलाकर इसे एक दिव्य युग कहते हैं। और जब ऐसे ये दिव्य युग 1000 बार बारंबार आते हैं तो फिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के ये 12 घंटे बन जाते हैं दिवस, और इतने ही 12 घंटे उनका रात उनकी रात हो जाती है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिवस में ऐसे 1000 चतुर्युग हो जाते हैं दिव्य युग, और ये तो केवल ब्रह्मा जी का एक दिवस है। और ब्रह्मा जी के एक साल में 360 दिन और उनके जीवन में 100 साल होते हैं। तो देखिए ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि कितनी है, कितनी लंबी है। तो शास्त्र में बताया जाता है कि इन प्रत्येक हर एक युग में भगवान श्री कृष्ण का कोई न कोई अवतार आता है, और ये अवतार आके यहाँ अलग अलग तरह के अवतार होते हैं। उनमें से एक तरह के अवतार होते हैं युगावतार। युगावतार मतलब हर एक युग में आकर वो युग धर्म की स्थापना करते हैं। हर एक युग में शास्त्रों में अलग अलग धर्म की पद्धति बताई हुई है। विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कृत युग अर्थात सत्य युग में धर्म की पद्धति थी ध्यान के मार्ग को अपनाना। लोग जंगल में जाते थे, 1,00,000 वर्ष तक जीते थे और फिर भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करते थे जो हृदय में विराजमान है, और सत्य युग में ध्यान का मार्ग है, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने का मार्ग ये युग धर्म है, द्वापर युग में बहुत ऐश्वर्यशाली रूप में भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की आराधना करना मंदिरों में ये युग धर्म है, और कलयुग में युग धर्म है हरि नाम का संकीर्तन करना। और हर एक युग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए कोई न कोई अवतार अवश्य आते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, एते चांत कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। सुख गोस्वामी बताते हैं कि अवतार तो कई है लेकिन अवतारों के उगम स्थान है स्वयं श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण को अवतारी कहते हैं क्योंकि सारे अवतार उनसे आते हैं, चाहे वो विष्णु हो, नारायण हो, वराहदेव हो, नरसिंह देव हो, ये सभी अवतार अवतार कहलाते हैं, लेकिन केवल श्री कृष्ण अवतारी है। इस तरह से ये अवतारी श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिवस में अपने श्री कृष्ण के आदि रूप में आते हैं। तो सोचिए 1000 चतुर्युगों में एक बार श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, और बाकी समय हर एक युग में श्री कृष्ण अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण के रूप में केवल 5000 वर्ष पूर्व आकर चले गए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो भी यही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, वही श्री कृष्ण जो कि अवतारों के स्रोत है, उगम स्थान है। और यही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी ब्रह्मा जी के एक दिवस में अर्थात 1000 चतुर्युग में एक बार आते हैं, जैसे कि स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। तो देखिए, और ये चैतन्य महाप्रभु केवल 500 वर्ष पूर्व हमारे देश में ही अवतार लेकर अप्रकट हो गए, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। वैसे हर एक युग में, हर एक कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन के युग धर्म को स्थापना करने के लिए जो आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार होते हैं, लेकिन केवल हमारे कलयुग में वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करने के लिए। देखिए हमारा सौभाग्य, कितने भाग्यशाली है हम। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में ऐसे 14 मन्वंतर होते हैं। तो 14 मन्वंतर में जो सातवां मन्वंतर है, उस सातवें मन्वंतर के भीतर 28वें चतुर्युग में जो द्वापर के अंत होता है उसमें श्री कृष्ण आते हैं, और उस द्वापर के अंत में जो कलयुग आता है उस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और उसी कलयुग में हम अभी रह रहे हैं। तो देखिए क्या हमारा सौभाग्य है। अपने सौभाग्य को समझने के लिए हमारा मन कितना चकरा जाता है, क्या चतुर्युग, 1000 घूम घूमना फिरना, मन्वंतर, ये सब क्या है। तो देखिए अपने सौभाग्य को समझने के लिए भी हमें कितना बुद्धि लगाना पड़ता है, कितने दुर्लभ है ये बात कि स्वयं श्री कृष्ण कृष्ण के रूप में आते हैं या चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। एक तरह से युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए, इस हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया और नवद्वीप में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक है जिसमें भविष्यवाणी की गई है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हालांकि उनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, लेकिन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पाशदम यज्ञ ही संकीर्तन पाए यजंत ही सुमेधसः। नव योगेंद्र महाराज निमि को समझाते हैं श्रीमद् भागवत में कि कलयुग में एक विशेष अवतार आने वाले हैं, और उनके क्या लक्षण होंगे। पहला लक्षण होगा कृष्ण वर्णम। कृष्ण इन दो अक्षरों का सदा वो उच्चारण करते रहेंगे, कृष्ण शब्द हमेशा उनके होठों पे रहेगा, इसलिए कृष्ण वर्णम। और साथ साथ तुषा अकृष्णम, अगर कोई कहे अच्छा कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो उनकी त्वचा होगी एक मेघ की तरह, बादल की तरह, जैसे कि श्री कृष्ण का था, तो नव योगेंद्र बताते हैं नहीं, तुषा अकृष्णम, कृष्ण मतलब काला, अकृष्ण मतलब जो काला नहीं है, उसका विपरीत जो बहुत गोरे है, लेकिन किस तरह के गोरे, वर्ण रंग के। सांगो पांगस्त्र पाशदम, वो अपने अंग उप अंग शास्त्र इनके साथ में आते हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी आए तो अपना धनुष बाण इत्यादि साथ में लेकर आए, जब कृष्ण भगवान आए तो वो भी अपना सुदर्शन चक्र लेकर आए, जब प्रभु नारायण भी आते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आते हैं। तो अलग अलग अवतार जब आते हैं तो अपने शस्त्र भी लेकर आते हैं, लेकिन ये जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके शस्त्र क्या थे। उनका शस्त्र यही था कि वो केवल भगवान के नाम देना चाहते थे हमको, जिससे कि हमारे हृदय में जो राक्षस हैं उनका वध हो जाए। और दूसरी बात, उनके अंग उप अंग कौन है। अंग का मतलब है अंश, नारायण विष्णु इत्यादि ये सब उनके अंश हैं। तो इनके अंशों के साथ में आए और इनके नित्य पार्षद उनके ध्यान से उनको सबको साथ में लेकर आए, इसलिए बताया जाता है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। इस तरह से ये संकीर्तन करते हुए जगह जगह भ्रमण करेंगे, सबको भक्ति के सागर में डुबो देंगे और संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन करेंगे। इसलिए नवयोगेंद्र बताते हैं यजंति ही सुमेधसः, मेध मतलब बुद्धि, सुमेध मतलब जो बहुत बुद्धिमान है, अकलमंद है। तो नवयोगेंद्र और श्रीमद् भागवत की घोषणा है, मत है कि जो कलयुग में बहुत बुद्धिमान होंगे, अकलमंद होंगे, वो ये भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को, इस अवतार को पूजेंगे, उनका भजन करेंगे, जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण कहकर जगह जगह अपने पार्षदों के संग में, अपने भक्तों के संग में भ्रमण करते रहेंगे और कृष्ण भक्ति के सागर को बढ़ाएंगे और जनता को इस भक्ति सागर में डुबोएंगे और उनको प्रेम से उन्मत्त करके उनके भी नाम से कृष्ण का नाम पुकाराए बुलाएंगे। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं और उनके पद चिन्हों में चलने वाले जो भक्त हैं, वो बड़े अकलमंद हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन क्या है कि भक्ति केवल अपने आप के लिए नहीं रखना है, बल्कि संसार भर में इसको फैलाना है। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो तारो ए देश, कि जिसको भी मिलोगे उनको कृष्ण का उपदेश देना। भारत भूमि ते होइले जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। उन्होंने आदेश दिया था सारे भारतवासियों को कि तुम्हारा जन्म भारत देश में हुआ है, ये पुण्य भूमि है, इसलिए तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो क्या जिम्मेदारी है कि सबसे पहले अपना जीवन सार्थक करो। अपना जीवन कैसे सार्थक कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बनके। और जब अपना जीवन सार्थक करने के साथ साथ दूसरों के ऊपर भी उपकार करो, कर पर उपकार, दूसरों का उपकार करो। कैसे उपकार कर सकते हैं उनका? उनको कृष्ण भक्ति देके। इस तरह से साथ साथ में संसार के लोग जब कृष्ण भक्ति करेंगे तो सारा संसार आनंद के सागर में डूब जाएगा और सभी लोग कृष्ण भक्ति की लहरें में झूमते रहेंगे। जैसा कि थोड़ी देर बाद जब कीर्तन होगा, जब आप सब देखेंगे और अनुभव करेंगे। श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में चलते आए हैं, अनुयायी हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक करके दिखाया। उनके परम गुरु भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे कि कब वो दिन आएगा जब अमेरिका से, रूस देश से, चीन से, यूरोप से, अफ्रीका से और अलग अलग प्रांतों के जगह से लोग एकत्र होंगे मायापुर में, नवद्वीप में, और जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौड़ हरि, इस तरह से गौरांग महाप्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे और हाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहेंगे। कब वो दिन आएगा? और भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा की पूरी की श्री प्रभुपाद जी ने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था की स्थापना की और हम देखते हैं कि इसकी वजह से हर एक देश में लोगों को भगवत गीता क्या है ये मालूम है। भले भगवत गीता का ज्ञान न हो, लेकिन कम से कम उन्होंने भगवत गीता सुना है कि ऐसा कुछ ग्रंथ है, कृष्ण का नाम सुना है, राम का नाम सुना है। हर एक देश में लोगों ने वैष्णवों का दर्शन किया है जो सड़क पर चलते चलते नृत्य करते हुए कृष्ण कीर्तन करते जाते हैं। हर एक देश के लोगों ने कृष्ण प्रसाद का सेवन किया है और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और उनकी कृपा से ये कलयुग के भीतर एक स्वर्ण युग आएगा। 10,000 वर्ष तक ये स्वर्ण युग रहेगा। अभी कलयुग की ये प्रथम संध्या चल रही है, 36,000 वर्ष की संध्या होती है कलयुग की, पहले और अंत में। और अभी कलयुग को बीते हुए केवल 5,000 वर्ष करीब बीत चुके हैं, तो हम कलयुग की प्रथम संध्या में हैं। अभी घोर कलयुग तो चालित नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि कलयुग के प्रथम संध्या में छाया में ही अगर इतना उत्पात है, इतना घोर अंधकार है, तो आगे चलकर जब कलयुग पूरे स्वरूप में स्थापित हो जाएगा तब क्या दशा होगी संसार की। इसलिए जल्दी से जल्दी सभी को शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए और कृष्ण भगवान के धाम में लौटकर जाना चाहिए। इस तरह से इस प्रथम संध्या के 10,000 वर्ष चैतन्य महाप्रभु के उद्घाटन किए हुए 10,000 वर्ष स्वर्ण युग होंगे। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किस तरह हम इस पृथ्वी लोक में स्वर्ण युग को पुनः लाएं। स्वर्ण युग आएगा और आ चुका है और बढ़ेगा आगे चल के। हमारे सामने केवल ये निर्णय है कि हम इसमें शामिल हों या न हों। जो इस हरिनाम के संकीर्तन के आंदोलन में शामिल होते हैं और स्वर्ण युग की स्थापना में सहायता देते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है और मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम में चले जाएंगे और पुनः यहाँ उनको कभी जन्म लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जानबूझकर जो भक्तों को टोकते हैं, छेड़ते हैं और भक्ति से विमुख रहते हैं, उनको बारंबार यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस के रहना पड़ेगा और कलयुग के दुखों को, पीड़ों को सहन करना पड़ेगा। इसलिए यदंत ही सुवेद रहा कि जो बुद्धिमान है उनको चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होकर कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के सबसे कृपालु रूप हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर पुषे नमः। कृष्ण प्रेम को जगह जगह बांट रहे हैं बिना मूल्य के। इसी तरह से आज के दिन जब उनकी आविर्भाव तिथि है, हमें चैतन्य महाप्रभु से, गौरांग महाप्रभु से कृपा याचना करनी चाहिए कि कृपा हमारे हृदय में भी आप श्री कृष्ण के प्रति, आपके प्रति शुद्ध भक्ति की जागृति कराइए, ताकि हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। गौरांग महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महोत्सव की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि महोत्सव की गौर पूर्णानंदे, हरिनाम संकीर्तन की।
प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि माया का निश्चय कार्य क्या है।
माया का कार्य ये है कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों से जो ईर्ष्या करते हैं, उनको हमेशा अंधकार में रखना, क्योंकि भगवान के धाम में जाने का अधिकार केवल उनको है जिनका हृदय ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से, भोग की भावना से मुक्त है। तो भगवान की माया शक्ति उन लोगों के लिए है, उनको अंधकार में रखने के लिए। जिस तरह से सरकार जेल कैद खाने का डिपार्टमेंट बनाती है उन लोगों को कैदी रखने के लिए जो कि सरकार के नियमों को तोड़ती है, उसी तरह से भगवान ने अपनी माया शक्ति बनाई है उन लोगों को बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में डालने के लिए जो कि जबरदस्ती भगवान के विमुख होते हैं, जानबूझकर जो भक्ति में नहीं आते हैं, उनको सबको बढ़े हुए अवस्था में रखने के लिए भगवान ने अपनी माया शक्ति को बनाया है।
आत्मा का निज कार्य क्या है।
आत्मा का निज कार्य क्या है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। और दास का कर्तव्य क्या होता है प्रभु के प्रति, सेवा करना, और कोई कार्य नहीं होता है। मय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। श्री कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं कि अर्जुन ये जान लो कि सारे जो जीव हैं वे मेरे अंश हैं, सनातन अंश हैं, और जो जीव मुझे भूल चुके हैं, संसार के चक्र में फंसे हुए हैं और मेरे प्रकृति के कड़क नियमों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, अपने स्वभाव को, स्वरूप को जान लेते हैं, वो इस कड़े संघर्ष की दुनिया से छूटकर भगवान के धाम में जाकर उनका नित्य संग प्राप्त करते हैं और नित्य आनंद का जीवन प्राप्त करते हैं।
तो एक एक लोग ऐसा होता है कि भूत पिशाच की भी पूजा करते हैं और भगवान की भी पूजा करते हैं, तो वो कौन से लोग में जाते हैं।
भूत प्रेत की पूजा भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, तो उनका चेहरा आधा भूत जैसा होगा, आधा भक्त जैसा होगा। संसार में हम देखते हैं कि लोग भूत जैसे दिखते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको न जाने क्या जीवन का उद्देश्य है किसी को नहीं मालूम, क्या कहां से आ रहे हैं कि जा रहे हैं ये भी नहीं मालूम लोगों को। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद् भाव भावितः। जो जैसी पूजा उपासना करता है उस हिसाब से उसके अंत काल में मृत्यु के क्षण में उसकी चेतना होगी, और जैसे उसकी मृत्यु के समय चेतना होगी वैसे ही उसको अगले गति प्राप्त होगी। तो उसने भूत प्रेत की पूजा भी की है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की है, तो दोनों में से जो भी शक्तिशाली है तो उसके अंत में रहेगा दिमाग में और वो गति की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कोई भूत प्रेत की भी पूजा करता है कृष्ण भगवान के साथ साथ, तो इतना निश्चित है कि इस जीवन में तो जब तक कि वो भूत प्रेतों की पूजा न छोड़ देता है तब तक वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचः। गीता का सार ये है कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दे दो और मेरे शरण में आओ। किस तरह से मेरे शरण में आओ? क्या भगवान जी कई कहते हैं कि थोड़ा शरण भूतों का ले लो और थोड़ा मेरा ले लो, थोड़ा चंडी देवी का ले लो, थोड़ा उनका ले लो और थोड़ा मेरा ले लो? नहीं, भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। एकम मतलब केवल, केवल मेरा शरण लो हे अर्जुन। ये मेरे सारे गीता का उपदेश जो मैंने दिया है तुम्हें, इसका सार है ये। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिने। हे अर्जुन मेरा भक्त बनो, मन ही मन मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, भजन करो, मेरी उपासना करो, और इस तरह से करते रहोगे तो निश्चित रूप से असंशय रूप से तुम जान लो कि तुम मेरे पास आओगे। भगवान ये नहीं कहते कि मेरा भी स्मरण करो, भूत प्रेतों का भी स्मरण करो, नहीं, केवल मेरा स्मरण करो। तो जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है साथ साथ भूत प्रेतों की भी भक्ति करता है, अगर वो भाग्यशाली रहा और उसे भक्तों का संग मिल गया तो फिर वो धीरे धीरे से भूत प्रेतों की पूजा वगैरह करना छोड़ देगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थित हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे से प्रगति करते हुए जिस दिन वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा, चाहे इस जन्म में, चाहे एक जन्म बाद, चाहे पांच जन्म बाद, उस समय वो अपने जीवन को सफल बनाकर भगवान के धाम में लौट के चले जाएगा।
श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ उत्तरित होने के लिए बाह्य तीन कारण है, तो इसमें तीसरा कारण कौन सा है?
हाँ, हम इस प्रश्न के लिए इंतजार कर रहे थे कि कौन पूछेगा, इससे हम जान सकें कि आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। हमने प्रवचन की शुरुआत में कहा था कि भगवान के अवतार लेने के बाहरी तीन कारण हैं और गुह्य तीन कारण हैं, और हमने ये भी बताया था कि आज हम केवल इन बाहरी कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वास्तव में हमने केवल दो कारणों के बारे में चर्चा की। तो तीसरा कारण क्या है अगर ये सुनना है तो आपको कल सुबह आना होगा। कल सुबह यहाँ प्रवचन 7:45 होगा, उस समय हम तीसरा कारण क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सस्पेंस रखेंगे, ठीक है।